नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन इसका लाभ शहर तक ही सीमित नहीं है बल्कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ ऐसा शहर है जहाँ देश के कई बड़े संस्थान मौजूद हैं।
चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि 2 नए मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 75 पुनः विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-25 अवधि की संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की शेन युफोई से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।